ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ठंडा ठंडा आवाज आ रहा है। सभी एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत समय से बैठे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, लंबे समय तक बैठे रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेच अप कर देंगे ताकि आपकी ठंडी ठंडी भाग जाए। ठीक है, गुड। बॉडी को मसाज कर देंगे।
Thank you.
वेरी गुड, सभी बैठ जाएं, सभी वार्म अप हो गए, हो गए वार्म अप, सबको मजा आया, वेरी गुड। अभी हम सभी सुनेंगे नया वर्ष में, बहुत थोड़े दिन रह गया, अभी नया वर्ष में हमारे पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाए। हम बाबा के बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे हैं। एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है व्यवहार, तीसरा होता है परमार्थ। तीनों क्या क्या चीजें जानते हैं, जानते होंगे सभी। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हजार्डस, लंबे समय तक बैठे रहने से स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है। आज साइंटिस्ट सभी रिसर्च करके बता रहे हैं, कंटिन्यूअसली अगर 3.5 घंटा कोई बैठता है डेली, उसको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, जो लाइफस्टाइल डिजीजे से हो रहे हैं। आज हम सभी सेडेंटरी हो गए हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, इसलिए सबको बीमारियां हो रही है। इसलिए हर घंटे में कम से कम 2-5 मिनट के लिए भी खड़े हो जाओ, थोड़ा घूम जाओ, टहल लो, फिर बैठो। अगर सिटिंग जॉब है, लंबे समय तक नहीं बैठना है। इसलिए आप एक क्लास के बाद 2 मिनट ब्रेक, थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा हाथ पांव हिला लो। मैं देख रहा था खड़े खड़े हाथ हिला रहे थे, पांव नहीं हिला रहे थे, कई भाई बहनों को देख रहा था। पांव भी हिलाना है, हाथ पांव एक बार हिलाना है, मैं आपको बताऊंगा उसका महत्व। अभी तो हम चर्चा करेंगे नया साल में हमें क्या पुरुषार्थ करना है। बता रहा था एक है पुरुषार्थ, एक है व्यवहार, तीसरा है परमार्थ। संसार में जीने के लिए जो कुछ कार्य करते हैं उसको व्यवहार कहा जाता है। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जीने के लिए तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो खाएंगे क्या, परिवार को चलाएंगे कैसे, तो इसको कहते हैं व्यवहार। परंतु आत्मा के लिए जो कुछ हम करते हैं, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। ये प्रकृति पुरुष का खेल है, इस संसार में 5 तत्वों का प्रकृति है, आत्माएं सब पुरुष हैं, दोनों का खेल चल रहा है। तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, इसके अंदर आत्मा रथी है। स्वयं को पुरुष समझकर इस शरीर रूपी रथ को जो चलाता है उसको पुरुषार्थी कहा जाता है। पुरुष अर्थ जो कुछ करते हो पुरुषार्थ है, अर्थात आत्मा के लिए जो कुछ करते हो, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ये सब नौकरी बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं तो व्यवहार है। परंतु आत्मा की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो कुछ करते हैं उसको कहते हैं पुरुषार्थ। आप श्रीमद् भगवत गीता अगर पढ़े होंगे, महाभारत का सीरियल देखे होंगे सभी, सभी ने सुना होगा। महाभारत में जो टाइटल सॉन्ग है जो महेंद्र कपूर जी ने गाया है, और टाइटल सॉन्ग क्या है याद है, ये कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की, ये कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की, महाभारत। तो भगवान हम सभी को पुरुषार्थ कराते हैं। क्या करने से आत्मा की उन्नति हो, प्रगति हो, सदगति हो, क्योंकि सभी आत्माएं तमो प्रधान हो चुकी है। अंत में जब सभी आत्माएं संसार में जन्म मरण चक्र में आते 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 बिल्कुल पतित बन जाती हैं, तब परमात्मा आते हैं, सभी आत्माओं का फिर कल्याण के लिए पुरुषार्थ सिखाते हैं। तो संसार में व्यवहार सीखने के लिए तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहां हम सभी को पुरुषार्थ सिखाया जाता है। यहां और कोई प्रोफेशनल बातें नहीं सिखाई जाती है। लेकिन दुनिया की स्कूल कॉलेज अगर देखा जाए, और परमार्थ तीसरी बात बताता हूं फिर बताऊंगा, परमार्थ जो परमात्मा के लिए हम जो कुछ करते हैं उसको परमार्थ कहा जाता है। आप जो सेवा कर रहे हो तन मन धन लगाकर, परमात्मा जिस महान कर्तव्य के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उनके जो सहयोगी बनते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी रीति से, समय, संकल्प, श्वास लगाकर, वो परमार्थ है। व्यवहार तो यहां के लिए ही है, जिस दिन आंख बंद कर देंगे हो गया, कितना भी बिल्डिंग, कितना भी बैंक बैलेंस, कितने भी गाड़ी मोटर सब यहां ही रह जाएगा। पुरुषार्थ और परमार्थ ये हमारे साथ चलने वाला है। तो आप सभी यहां आए हो पुरुषार्थ और परमार्थ सीखने के लिए। मैं बता रहा था दुनिया में स्कूल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, कहीं भी कोई भी कोर्स अटेंड करता है, 2 साल 4 साल 5 साल चलो 10 साल भी पढ़ लेगा, लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो सारा जीवन भर पढ़ाया जाए? है कोई? सारी आयु पूरा कहीं जाके एडमिशन लेना पड़े और सारा पूरा जीवन भर पढ़ना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कहीं भी, सारी दुनिया में कहीं नहीं। तो इस विश्वविद्यालय में जब से एडमिशन लिया अंतिम श्वास तक पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो पढ़ाई है वो लिमिटेड कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस में कोर्स में अटेंड कर लिया, ज्वाइन कर लिया, 5 साल की पढ़ाई है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, चलो 4 साल की पढ़ाई है, पढ़ लिया, उसमें वो डिग्री प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहां जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें क्या डिग्री मिलेगी जानते हैं? कौन सी डिग्री मिलेगी? कौन सी डिग्री मिलेगी? कौन सी डिग्री मिलेगी? यहां जो डिग्री मिलेगी सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, डॉक्टर तो बना, लेकिन उसकी डिग्री होती है ना एमबीबीएस के आगे एमडी एमएस। यहां सारी डिग्रियां मिलती है, जानते हो ना? नहीं, यहां सारी डिग्री, दुनिया में जितने डिग्रियां हैं सब मिलेगा इधर। आप क्या कहते हैं उसमें, एमबीबीएस में ना बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यहां क्या कहा जाता है जानते हो? यहां वही एमबीबीएस डिग्री मिलता है, यहां बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फिर मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी बनेंगे, एमएस बना मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एमडी बना मास्टर ऑफ क्या बनेंगे, डिविनिटी बनेंगे। ठीक है, तो यहां ही सब कुछ मिलेगा आपको, सारी डिग्रियां यही है। आपको पता है बाबा यहां कई बच्चों को एलएलबी डिग्री भी देते थे, एलएलबी कहते थे, ये एलएलबी है। एलएलबी किसको कहते थे जानते हो? एलएलबी बना बाबा को एक बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जानते हो क्या? बाबा हमेशा कहते थे नजदीक आओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ, दूर दूर क्यों बैठे हो, नजदीक आओ। बाबा दादियों को भी, सभी को भी, जल्दी नजदीक आओ, नजदीक आओ। जो पीछे बैठते हैं ना, बाबा उनको टाइटल देते थे, द लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच, द लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच। जो भी भाई बहन पीछे बैठे हैं आगे आ जाओ, अच्छा लगेगा, नजदीक आओ। दूर बैठते हैं, किसी का सकल सूरत भी नहीं दिखता है, नजदीक नजदीक बैठे हैं, अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा। बहुत पीछे नहीं बैठना होता है। जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, एकदम सामने, बिल्कुल एकदम नजदीक। पीछे बैठने से कैसे भी बैठो, टीचर का दृष्टि भी नहीं जाएगी और सुने नहीं सुने, कैसे आए, कहां बैठे, कौन देखता है। इसलिए बाबा हमेशा, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बाबा हमेशा कहते थे ये एलएलबी है, तो हमें लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच नहीं बनना है। ठीक है, तो बाबा यहां सारा जीवन जो पढ़ाते हैं, हमें देवी देवता तो बनना है, लेकिन देवी देवताओं के जो क्वालिफिकेशन है क्या बताइए? सभी सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, हो गया। और 3 है, सारी डिग्रियां पता नहीं फिर पढ़ेंगे कैसे। और 3 डिग्रियां है, सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। इच्छा मात्रम अविद्या, देवताएं कोई इच्छा कामना नहीं होगी, इच्छा मात्रम अविद्या। और सारा विश्व का मालिक बनेंगे ऐसे तैसे थोड़ी बनेंगे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान और संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवता, ये सारी डिग्रीज यहां ही प्राप्त करना है। वहां खाली आपको ड्रेस चेंज होगा, शरीर चेंज होगा, सारे डिग्री यहां ही मिलेगा। बाबा ने कहा यहां ही तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, यहां ही तुमको सोलह कला संपन्न बनना है। तो ये पढ़ाई हमारे थ्योरी नहीं है, कहीं बैठ के थ्योरी एग्जाम दे दिया पास हो गया, ऐसा नहीं है। यहां प्रैक्टिकल सब कुछ है और इसी जीवन में ही बनना है। और ये सारी विशेषताएं हमारे जीवन में आए, क्या क्या बताया, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, इच्छा मात्रम अविद्या, मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं, ये है देवताओं की कंप्लीट महिमा। तो ऐसा बनने के लिए सारा जीवन देना पड़ेगा। एक साल, दो साल, चार साल की पढ़ाई में ऐसा कोई नहीं बन सकता है। हम सभी आत्माएं कैसे बन गई हैं, बिल्कुल तमोप्रधान पतित, और बनना है ऐसा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। देवताओं को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ऐसा बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इसलिए सारा जीवन लगाना पड़ता है। लौकिक पढ़ाई में आप देखना, इस साल जो पढ़ते हो अगले साल प्रमोशन होता है, फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यहां शुरू से लेकर हमारा चार सब्जेक्ट है, शुरू से लेकर जो आज ज्वाइन किया इस विश्वविद्यालय में वो भी चार सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और अब 50 साल भी हो गया, 60 साल भी हो गया, वो चार सब्जेक्ट पढ़ रहा है। चार सब्जेक्ट कौन सा सभी को पता है, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट से ही वो सारी डिग्रियां मिलेगी। ज्ञान से कौन सी डिग्री मिलेगी, ज्ञान से क्या बनेंगे, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा, आठ डिग्रियां बताई, उसमें से कौन सा बनेंगे, कभी सोचा? ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, क्योंकि सारी ईश्वरीय मर्यादा आपको पता होना चाहिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल लॉज आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञान से बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। योग से क्या बनेंगे, योग से बनेंगे संपूर्ण निर्विकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान। जो आठ डिग्रियां बताया देवताओं का, वो डिग्रियां ये चारों सब्जेक्ट से ही मिलेगा। ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, योग से संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। धारणा से क्या बनेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, गुणों की धारणा कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न और इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा लिया, और कोई इच्छा रहेगी नहीं, सब धारणा हो गई, सब मिल गया, संतुष्टता हो गई, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। और सेवा से क्या मिलेगा, सेवा से क्या बनेंगे, सेवा से बनेंगे सोलह कला संपूर्ण, क्योंकि सेवा से ही हमारे जीवन में कलाएं आती है। मान लीजिए आपको खाना बनाना नहीं आता है, आप जाके किचन में सेवा करिए, एक महीना दो महीना देखना आपको सब बनाना, सब्जी बनाना आ जाएगा, दाल बनाना आ जाएगा, सब बनाना आ जाएगा। आप कोई कारपेंटरी में जाके सेवा कर लो, देखना आपको कारपेंटरी भी आ जाएगी। सेवा करने से सोलह कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो जो सारी डिग्रियां है ये चार सब्जेक्ट में ही हमको अचीव करना है। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लौकिक में, आप देखना मैथमेटिक्स हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, कोई यूनिवर्सिटी में भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेके पढ़ता है, कोई तो पीएचडी भी करता है मैथमेटिक्स में, वही मैथमेटिक्स है। लेकिन देखो कितना अंतर है पढ़ाई में, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम, स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी भी कर रहा है हिस्ट्री पढ़ के, वही हिस्ट्री सब्जेक्ट है, लेकिन अंतर है कि सेम है। इसी प्रकार हर साल प्रमोशन होता है, नया कुछ सीखने के लिए प्रमोशन होता है। इस पढ़ाई में भी हमें आगे बढ़ना है। बाबा को हमेशा पसंद है नवीनता, कुछ नया करो, चाहे पुरुषार्थ में चाहे सेवा में, नवीनता बाबा को बहुत पसंद है। अगर पिछले साल जो कर रहे थे यही साल भी वही कर रहे हैं, अगले साल भी वही कर रहे हैं, मतलब उसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं हम, आगे तो प्रमोशन हो नहीं रहा, यहां तो कोई अलग अलग कक्षा नहीं है जो वहां जाके जाओ शिफ्ट हो जाओ चेंज हो जाओ, ऐसा तो नहीं है। यहां आज भी कोई एडमिशन लेने वाला इधर बैठा होगा और 50 साल बाद पुराना भी इधर बैठ के सेम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर यही है। अगर हम हर साल हमारे जीवन में कुछ नवीनता आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, माना हमारा प्रमोशन हो रहा है, पिछले साल जो कर रहे थे ये साल भी वही कर रहे हैं, अगले साल भी वही करते रहेंगे, तो फिर वही कदम वही क्लास में ठहरती कला हमारा आगे तो बढ़ ही नहीं रहे। भले ज्ञान में 30 साल हो गया लेकिन वही कदम तो वही है। इसलिए अगले साल के लिए हमें क्या करना है, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया हो गया। दुनिया में नया साल आता है बहुत धूमधाम से लोग मनाएंगे, खूब फटाका फोड़ेंगे, खुशियां मनाएंगे, मिठाई खाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, कार्ड्स देंगे, ग्रीटिंग्स देंगे सबको हैप्पी न्यू ईयर, एक दिन हो गया भूल गए ज्यों को त्यों। हमें क्या करना है, हमें भी वही करना है नहीं। ब्राह्मणों का मौज बाबा कहते अलौकिक मौज, रूहानी मौज, तुम दुनिया जैसे नहीं कर सकते बाबा कहते, उसमें लौकिकता है, बाजा गाजा हो हल्ला क्या रखा है उसमें, वो अविनाशी खुशी है। बाबा कहते तुम्हारी खुशी तो अविनाशी खुशी है, तुम्हारा अलौकिक, सब कुछ अलौकिक। तो नया साल में हमें नवीनता क्या लानी है, यही चार सब्जेक्ट हम सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बताया जैसे उदाहरण के रूप में, अभी हम सभी मुरली सुनते हैं, सभी योग करते हैं, सभी सेवा भी करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यही पढ़ाई पढ़ के कोई विश्व महाराजन बन रहा है और कोई तो वहां जाके प्रजा बनेगा, दास दासी भी बनेंगे, क्यों ऐसा भाई? तो जरूर पढ़ाई में कुछ ठीक से नहीं पढ़े होंगे। टीचर तो क्लास में समान पढ़ाता है सबको, लेकिन स्टूडेंट उसको कैसे पढ़ता है उसी आधार से दुनिया में भी कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है उसी स्कूल में पढ़ के, और कोई तो जाके कहीं पीएन क्लर्क बनता है। यहां भी बाबा हम सभी को पढ़ा रहे हैं, किसी के लिए स्पेशल ट्यूशन नहीं है, सेपरेट क्लास नहीं है, सब सेम है, समान पढ़ाई सबके लिए, लेकिन इस पढ़ाई को कितनी गहराई से सेल्फ स्टडी कोई करता है और उसको जीवन में जो लक्ष्य दिया है उसको जीवन में, क्योंकि यहां कोई बैठ के थ्योरी एग्जामिनेशन कोई आपको मार्क तो देगा नहीं, अंत में बाबा देखेंगे प्रैक्टिकली हम क्या बने। जो धारणा सब्जेक्ट है, एक समय था जो हमारी दादियां थी और जो हमारे जगदीश भाई जी के बारे में सुन रहे थे सुभाष भाई जी से, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अंत समय में जगदीश भाई जी के शुरू में ही मेरे मन के सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर किया था, क्योंकि मैं मेडिकल पढ़ाई पूरी करके एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था और इतना स्ट्रेस था लाइफ में कि बात मत पूछो, डेली 200-250 पेशेंट देखना और लोग इतना ऐसे पब्लिक म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में आप जानते होंगे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं है जो क्यू में एक के बाद एक कोई आएगा, वहां तो मच्छी बाजार की तरह आप बैठे हो ओपीडी में, एक ही साथ 30-40-25 लोग चारों तरफ आपके इर्द गिर्द आगे पीछे, डॉक्टर साहब जल्दी करो, डॉक्टर साहब डायरिया हो रहा है, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, एक ही साथ सब चिल्लाते रहेंगे, कैसा लगेगा आपको? मुझे तो लगता था बहुत कम दिन में मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि खाली चिल्लाते नहीं थे, कई तो गालियां भी देते थे। दुनिया में जैसे हैं सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी सब खा जाते हैं पैसा, ऐसी दवाई देते हैं कुछ काम ही नहीं करता है, आपके सामने फेंके जाएंगे। तो मुझे इतना स्ट्रेस था, उस समय ही बाबा का मुझे परिचय मिला और मेडिकल पढ़ने के नाते मन में बहुत सारे क्वेश्चंस, और हमारी बहनें तो सारी क्वेश्चन का जवाब कुछ कुछ तो देते थे, कुछ नहीं दे पाते थे। मैं समझ गया कि नहीं, मुझे हेडक्वार्टर में जाके पूछना पड़ेगा। मैं लिख के रखता था और जब भी मधुबन आता था यहां जगदीश भाई जी से मिलता था, वो मेरे सारे मन के सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए सब कुछ। एक ऐसा व्यक्तित्व तो मेरा सौभाग्य रहा कि उनके सान्निध्य में आने का। चलो ब्रह्मा बाबा को मैंने नहीं देखा साकार में, हालांकि अव्यक्त बाप दादा तो कितने बार मिले हैं, उसी रूप में उसी शरीर में बाबा को भले नहीं मिला, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा जब आते थे तो बाबा के साथ रात रात, बाबा शाम को 5 बजे हम लोग बैठते थे, गुलजार दादी आके बैठती थी, मेडिटेशन चलता था, दूसरा दिन सवेरे 6 बजे था, 7 बजे था, 8 भी बजे था, एक बार तो यहां ज्ञान सरोवर 10 बज गया, होल नाइट जैसे स्नेह का सागर छलक रहा है, इतनी गुह्य बातें, मेरा तो डायरी भर जाता था, पूरा बैठ के लिखता था पूरा सारी रात, बाबा पढ़ाते थे इतने सुंदर, जिन्होंने वो नहीं देखा वो अनुभव नहीं कर सकेगा, तो भगवान कैसे प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है। तो जगदीश भाई जी एक व्यक्तित्व तो ऐसा है, मैं देखा पूरा बाप समान, इतने नम्र और निर्माण निरंकारी और ज्ञान का सागर। बाबा तो उनकी सारी किताब आप पढ़ लीजिए, मैं तो 2-3 महीने में पागल की तरह सारी किताब पढ़ लिया उनकी, सारी किताब खाली दिन रात पढ़ता था। अंत समय में भी जब उनका शरीर छोड़े हो, उस समय भी मैं पिछले समय भी लास्ट तक था उनका, एज ए फिजिशियन उनको जो भी जरूरत होता तब मुझे बुलाते थे, और किसी से इंजेक्शन भी नहीं लगाते थे, मेरे से लगाते थे, क्योंकि उनको आईवी देना या कुछ करना जो भी है मेरे से लगाते थे, कहते थे आप जो इंजेक्शन लगाते हो मेरे को जरा भी पता नहीं चलता, यू आर मिस्टर पेन किलर, मुझे बहुत सारे वरदान दे के। मेरा कहने का भावार्थ है कि इस पढ़ाई में देखिए ऐसा समय था जो धारणा का सब्जेक्ट पढ़ाते थे हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई, अभी धारणा का सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? आप सवेरे सवेरे मुरली सुन लिया, योग कर लिया, सेवा कर लिया, धारणा का सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है? कोई है ही नहीं यार। लेकिन सबसे मुख्य है धारणा का सब्जेक्ट। यहां प्रैक्टिकली जो देवी देवता जैसा बनेगा वही स्वर्ग में जाएगा, वही ऊंच पद पाएगा। मेन है धारणा। आप कितना घंटा बैठ के योग करते हो, कितने बार मुरली पढ़ते हो, किसी को कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकल लोग देखना चाहते हैं आपके चाल चलन, बोल व्यवहार, आचरण, जीवन की धारणाएं देखना चाहते हैं। देवता जैसा है, बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा है। तो मुख्य बात तो धारणा सब्जेक्ट है। तो चारों सब्जेक्ट में हम क्या क्या नवीनता लाएं। जो बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं, बाबा ने कहा है ये ज्ञान को समझने के लिए कम से कम 10-12 साल चाहिए, पूरी बातें गुह्य राज को समझने के लिए टाइम चाहिए। कोई आज आके ज्वाइन किया है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो सारी ज्ञान की सारी बातें समझ जाएगा? नहीं नहीं, ज्ञान में कितनी सारी बातें हैं। सब्जेक्ट ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, लेकिन आप आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान, ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, सत्य असत्य के ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, सारे धर्मों का सार का ज्ञान, सारे वेद शास्त्रों का सार का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, माया का ज्ञान, जीवन संसार में रहते हुए न्यारा प्यारा रहने का ज्ञान, कमल पुष्प समान कैसे जीवन जिए, बहुत सारी बातें जो जीवन में धारण करने की है। तो ज्ञान सब कुछ ज्ञान, ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सारी गुणों का ज्ञान, सारी शक्तियों का ज्ञान, सारी कलाओं का ज्ञान, पहले तो ज्ञान फाउंडेशन है। इसी प्रकार फिर योग, हमें सब समझ आ गई लेकिन उसको जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए योग, योग बल कहा जाता है। ये भी जितना गहरा अनुभव होगा, अभी 1 साल हुआ कि नहीं कोई इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया, उसका मन एकदम संपूर्ण एकाग्र हो के परमात्मा से सर्वशक्तियां ले सकता है? वो इम्पॉसिबल, मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो इसलिए योग की गहराई का अनुभव, बीज रूप अवस्था, जलाश रूप अवस्था, इसके लिए त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, मन तो इधर उधर भटकता रहता है। इस प्रकार धारणा, सारे गुणों की धारणा हो जाए, सारी शक्तियां जीवन में आ जाए, सर्व कलाएं जीवन में आ जाए, ऐसे हो जाएगा। इसलिए इतना समय लगता है, सारा जीवन बिताना पड़ता है। तो आप सभी हर साल जीवन में प्रगति अनुभव करते हैं। प्रगति का फाउंडेशन है प्लानर। पहले प्लानर बनाना, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। दुनिया में जो वीआईपीज होते हैं उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, चाहे गवर्नर चाहे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। दुनिया में सबसे बड़ा वीवीआईपी तो बाबा कहते आप हो, आपका भी प्लानर होना चाहिए। मुझे सारे दिन में आज सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, अमृत वेले से रात को गुड नाइट तक क्या करना है। इसी प्रकार आप वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, क्वार्टरली प्लानर, एनुअल प्लानर बनाइए। जब तक प्लानर नहीं बनाएंगे पुरुषार्थ होगा नहीं, प्रगति होगी नहीं। वही कदम, हाँ मुरली सुन ला, सुन लिया, यो क्या, हाँ क्या, तो प्लानर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको चार पांच बातें ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा कुछ भी नहीं होगा। दो चार चीजें ही रखना है सामने कि मुझे ये साल ये अचीव करना है, कुछ भी हो जाए, अगले साल फिर और कुछ, अगले साल और कुछ, ये साल में मुझे ये करना है। 2022 के लिए चारों सब्जेक्ट में हम क्या नवीनता लाएं, मैं आपको सार रूप में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। आप अपना बना सकते हो प्लानर, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग है, हर एक का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, लेकिन एक जनरल मैं आपको बता देता हूं। जो आप बाबा का अंतिम समय आप देख रहे हो, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बाबा ने कहा कि एक जब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब परिवर्तन होगा। पढ़ाई पूरी हो गई कि नहीं? 31 दिसंबर 2017 ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई। अभी जो कुछ चल रहा है ये खाली रिवीजन चल रहा है। जैसे स्कूल में रेगुलर जो एजुकेशन पूरा हो जाता है, फिर एग्जाम से पहले स्टूडेंट को प्लानिंग करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, खुद को मेहनत करना पड़ता है। अभी जो भी विनाश से पहले बाबा हमें समय दे रहे हैं, ये हमारे सौ पुरुषार्थ के लिए, हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए ये समय हमको मिला है साधना के लिए। तो इसलिए हमें पहले प्लानर करना, प्लानर बनाना पड़ेगा, फिर उसी अनुसार मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर जीवन में प्रगति होगी। तो चारों सब्जेक्ट में क्या क्या करें, बाबा कब से बोला है कि अचानक होगा, अचानक होगा। दुनिया की पढ़ाई में क्वेश्चन पेपर अनाउंस नहीं होता है, डेट अनाउंस हो जाता है, लेकिन हमारी पढ़ाई में डेट बाबा कहते एक सेकेंड पहले भी नहीं बताऊंगा, तुमको क्वेश्चन बता देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट पेपर क्या आएगा, लास्ट पेपर आएगा अशरीरी भव। जो शरीर को एक सेकंड में भूल पाया, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गया, वही उड़ जाएगा बाबा के साथ। इस शरीर रूपी दुम को लेके नहीं जाएंगे हम। जो शरीर को नहीं भूल पाएगा बाबा के साथ जा ही नहीं पाएगा, परमधाम जा ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारा मुख्य पुरुषार्थ तो वास्तव में अशरीरी बनना। हमारा लक्ष्य है इस जीवन में बाप समान बनना है, भविष्य में हम देव पद अचीव करना है। इस जीवन में बाप समान बनना है, बाप समान बनना, शिव बाबा जैसा अशरीरी बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता बनना है, इस जीवन में ही बनना है। और देवताएं जैसा सारी गुण जीवन में, सारी कलाएं, सारी शक्तियां जीवन में अपनाने हैं, भविष्य में देव पद मिलेगा। तो इसलिए अंतिम लास्ट पेपर आएगा, बाबा कहेंगे अशरीरी भव, जो शरीर को भूल गया एक सेकंड में वही बाबा के साथ उड़ जाएगा। नहीं तो चिल्लाता रहेगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए शरीर को भूलने के लिए, क्योंकि पूरा 84 जन्म हमने इस शरीर के साथ लिया, तो शरीर को भूलना इतना इजी नहीं है। इसको खिलाओ भी, पिलाओ भी, नहलाओ भी, सब कुछ करो, लेकिन शरीर को भूलो भी आसान नहीं है। बाबा कहते मेहनत चाहिए, साधना करनी पड़ेगी। तो ज्ञान का सब्जेक्ट में नवीनता क्या लाएं, बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं अचानक होगा, तैयार हो जाओ। तो ज्ञान का सब्जेक्ट में बाबा ने कहा है कि बच्चे सुनना सुनाना तो ये तो द्वापर युग से चलता आ रहा है, सुनने से कुछ नहीं होगा। वही मुरली तो सभी सुन रहे, क्यों सब विश्व महाराज नहीं बन रहे। ज्ञान का ऑब्जेक्ट है हमें स्वरूप बनना, ज्ञानी तू आत्मा बनना, प्रैक्टिकल जो बाबा सुना रहे हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में दिखे दे, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। एक है जानना मानना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में बनना, हमको बनने के लिए बाबा सिखा रहे हैं। पंडित की तरह खाली तोता की तरह रिपीट करने के लिए नहीं, सुनना सुनाना ये द्वापर युग से चल रहा है, उससे संसार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे गाय में भी इतने अकल है जो खाने के बाद फिर जुगाली करती है। तो आप इस ज्ञान को मनन करो, मनन करो, रोज मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, तो बाबा का ज्ञान अपने जीवन में समा जाएगा, बाबा की सारी जो खजाने अपने खजाने अनुभव होगा। तो डेली ज्ञान का मनन करना, एकांत में बैठ के कोई भी एक टॉपिक लेके डायरी पेन लेके लिखो, चिंतन करो, उसके गहराई में जाओ, गुह्यता में जाओ, ऊपर ऊपर लहराओ नहीं। जो समुन्द्र में ऊपर ऊपर लहराता है उसको मछली मिलते हैं, जो अंदर जाएगा उसको रत्न मिलेंगे। तो गहराई में जाना है, ज्ञान की गुह्यता में जाना है, तो इसलिए विचार सागर मंथन करना है, तो बाबा का खजाना अपना खजाना अनुभव होगा। फिर सारा दिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। फर उदाहरण, आप फरिश्ता उदाहरण रूप में आप बैठिए, सवेरे बैठ के चिंतन कीजिए, फरिश्ता किसे कहा जाता है, फरिश्ता अर्थात क्या, फरिश्ता की क्या निशानियां होगी, फरिश्ता के क्या गुण विशेषता होंगे, जो फरिश्ता होगा उसके चाल चलन बोल व्यवहार कैसा होना चाहिए, गहराई से चिंतन कीजिए उसके। फरिश्ता बनने के लिए क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, क्या क्या बाधक हो सकते हैं, फरिश्ता की दृष्टि कैसे होगी, वृत्ति कैसे होगी, सोच कैसे होगा, बोल कैसे होगा, कर्म कैसे होगा, चिंतन कीजिए उसका, लिखिए और सारा दिन फिर उसका स्वरूप का अभ्यास कीजिए। तो ज्ञान का सब्जेक्ट के लिए विशेष इस साल में हम नया साल में यही नवीनता लाएंगे कि मुझे रोज विचार सागर मंथन करना है, रोज लिखना है, कोई ना कोई टॉपिक पर गहराई में जाना है। किसी से उतार लेना वो विचार सागर मंथन नहीं है। आप मुरली सवेरे सुन लिए, जाके मुरली का डायरी में कॉपी करके उतार दिए पॉइंट, उसको विचार सागर मंथन नहीं कहा जाता है। कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं रखना, रखे बुद्धि रोज तो बाबा से सुन रहे ना, ज्ञान बुद्धि में है, अपने बुद्धि का ज्ञान को मंथन करना और लिखना। सबसे बहुत सुंदर तरीका है लिखना विचार सागर मंथन के, खाली बैठ के सोचेंगे तो हवाई किला जैसे हो गया, इधर उधर बुद्धि भटकेगी, लिखना रोज। तो ये साल ज्ञान में नवीनता लाएंगे, सुनते तो सभी हैं लेकिन मनन करते हैं कोई ना कोई, कोई में कोई। जो मनन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, बाबा के ज्ञान गुण शक्तियां सारे अंदर में समाते हैं और फिर वो स्वरूप भी बन पाते हैं। तो इसलिए इस साल नवीनता करेंगे, विचार सागर मंथन रोज करना है। जो रोज विचार सागर मंथन करते हैं हाथ उठाइए, लिखते हैं रोज, रोज लिखते हैं, हाथ उठाइए दोबारा दोबारा दोबारा, एक दो तीन, बहुत अच्छा, बधाई। देखो सारी क्लास में दो तीन भाई ही उठा रहे हैं, आपको बधाई हो। कितने साल हो गया ज्ञान में भाई जी, बहुत अच्छी बात। जो नहीं कर रहे हैं आज से चिंतन करो, आज से मुझे करना है, ज्ञान में यही नवीनता लाना है, मुझे रोज विचार सागर मंथन करके लिखना है और उसी स्वरूप का प्रैक्टिकल जीवन में उसको ऐसा बनना है मुझे, ऐसा बनना है मुझे, यही नवीनता लाएंगे। ठीक है, अच्छा योग सब्जेक्ट में क्या नवीनता लाएंगे, मुरली सुनना ये तो प्रिलिमिनरी है, एक नियम नेमिनाथ जैसा नियम जैसा हम कर रही है, ये तो होगा, अंत तक करना ही है, क्योंकि हमारी बुद्धि में भूसा है सब। बाबा से रोज रोज नहीं सुनेंगे तो निश्चय नहीं बैठता, फिर वो भूसा मिक्स हो जाएगा, उसको रिप्लेस करने के लिए डेली पानी भरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार रोज नियम तो है सुनना, लेकिन एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करना। विचार सागर मंथन करने का सही समय है अमृत वेला। जगदीश भाई जी मुझे कह रहे थे, मैं सारे जीवन काल में 35 साल 2 बजे से पहले उठाऊं, 35 साल सोचो तो सही, बाबा को सारे जीवन में कभी भी बाबा को 2 बजे के बाद सोया हुआ किसी ने नहीं देखा, बाबा रोज विचार सागर मंथन करते थे। तो जगदीश भाई जो इतनी सारी किताबें लिखी हैं, कैसे लिखे हैं, वो अमृत वाले लिखे हैं, बाबा से थोड़ा सा योग लगाने के बाद बैठ जाते थे, कहते थे मैं एकदम ऊपर से जैसे फ्लो हो रहा है, मैं कंटिन्यूअसली लिखता था लिखता था लिखता था। तो बाकी दिन में तो गोरख धंधा रहता है, अनेक डिस्टर्बेंसेस भी होगा। सबसे अच्छा समय है अमृत वेले, बैठ के चिंतन करो, लिखो। तो ज्ञान में यही नवीनता लाएंगे। योग में क्या नवीनता लाएंगे? योग में, योग का लक्ष्य क्या है? योग से ही हम संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। कोई किसी भी विधि से हम निर्विकारी नहीं बन सकते। द्वापर युग से इतने साधु संन्यासी ऋषि मुनि तपस्या करते करते दिमाग से पूरा मिट्टी से ढक गए, तो भी नहीं हो पाया। एक बाबा जो हमें योग सिखाते हैं, राजयोग, इससे ही हम निर्विकारी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? निर्विकारी अर्थात सतोप्रधान। आत्मा जब सतोप्रधान स्थिति में होती है, कोई भी विकार नहीं होता है। विकार क्या होता है? विकार हमारे जो गुणों की विकृति है, अपभ्रंश हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो उसको विकार कहा जाता है। तो हमारे अंदर जो सात गुण है, आत्मा के सात गुण क्या क्या है? आत्मा के दो प्रकार के गुण है, जानते हैं? आत्मा के दो प्रकार के गुण है, एक है अनादि गुण, दूसरे हैं आदि गुण। अनादि गुण सात है, अनादि गुण सात है, क्या क्या? सिस्टमेटिक याद रहेगा, सुनिए बहुत अच्छा है, इधर उधर नहीं करना, गोलमोल करते रहते हैं सभी। सबसे पहले ज्ञान, बाबा आकर हम सभी को ज्ञान देते हैं। ज्ञान से जीवन में पवित्रता आती है। हम सभी ज्ञान स्वरूप हैं, हम सभी पवित्र स्वरूप हैं, ज्ञान से पवित्रता आती है। दुनिया में भी देखो, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कैसे गंदे रहते हैं सब, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद साफ सुथर हो जाते हैं सब। तो ज्ञान से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं है, जीवन में कोई पवित्र हो ही नहीं सकता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पहले ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। जीवन में जब ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति आ जाती है, दूसरों के लिए प्रेम भाव जागृत हो जाता है। तो आत्मा प्रेम स्वरूप, और जीवन में ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति, प्रेम है, तो आनंद ही आनंद है, आनंद स्वरूप। फिर जब ये छह गुण हो गए, तो फिर शक्ति स्वरूप आत्मा बन जाती है। तो ये सात गुण से हम सात विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य है पांच विकार, लेकिन और दो छोटे भाई है, बहुत बहुत बड़ा। सभी एक मिनट में एकाग्र हो जाएं परम धाम में, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं, शिव शक्ति स्वरूप। ओम शांति। योग द्वारा संपूर्ण निर्विकारी तो बनना है, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है बाद में बताऊंगा सारी गुणों की बातें, क्योंकि उदाहरण सब्जेक्ट में है। तो योग में बाबा ने कहा है, बच्चे कम से कम 25 मुरलियां होगी लास्ट लास्ट दिनों में, चार पांच साल तो बाबा खुद आके प्रैक्टिकल कराए। बाबा ने कहा है, बच्चे अगर रूहानी ड्रिल अगर आप नहीं करोगे अभ्यास, तो अंत में फेल हो जाओगे। चाहे कितने भी आप तन मन धन लगाकर सेवा किए हो, कितने भी लोगों को कोर्स कराए हो, भाषण किए हो, सेंटर बनाए हो, कुछ भी किए हो, अगर रूहानी ड्रिल का अभ्यास नहीं किए हो, तो अंत में फेल हो जाओगे। पांच स्वरूप का ड्रिल बाबा ने जो कहा, हर घंटे में 5 मिनट, 8 बार हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बजता ही है, तो 8 बार ये 5 स्वरूप का ड्रिल करना है। 5 स्वरूप का ड्रिल सभी को याद होगा, सभी पता है। जो भाई बहने 5 साल से कम समय में ज्ञान में चल रहे हैं, हाथ उठाइए। 5 साल से कम, अच्छा काफी है। और 5 साल और 10 साल के बीच में, अच्छा जो 20 साल से ज्यादा, अच्छा थोड़े हैं। चलिए, हमारे सभी के लिए तो उम्र को ही है, बाबा कहते रूहानी ड्रिल करना है। क्या है? अभी हम सभी साकार रूप में यहां, आप सभी स्कूल में ड्रिल किए होंगे, याद होगा हमारे जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर जो देते थे, पीटी कराते थे, याद है सभी को बचपन में? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बाबा ने जो 5 स्वरूप कहा है, वास्तव में हमारे जो सत्यु की जो स्वरूप है, देवता स्वरूप, मध्यकाल में हमारी जड़ मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति की पूजा करेंगे, तो दोनों स्वरूप को आप एक स्वरूप भी ले सकते हो। यही मेरा पूज्य स्वरूप है, पूजनीय स्वरूप है। जैसे चतुर्भुज विष्णु, मैं स्वर्ग में ऐसे विश्व का मालिक चतुर्भुज विष्णु बनूंगा, लेकिन मेरे जड़ मूर्ति को द्वापर युग में भगवत आत्मा पूजा करेंगे, लेकिन स्वरूप तो वही है। सचमुच पूंछ वाले सूंड वाले तो नहीं बनते हम, ऐसा स्वरूप को याद भी नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। हम विश्व का मालिक चतुर्भुज विष्णु बाबा अभ्यास कराते थे हमारी दादियों को। दो दादियों को आपस में खड़े होने के लिए कहते थे, पीठ को पीठ लगाकर। एक को कहते थे हाथ दो ऊपर रखो, एक को कहते थे हाथ नीचे करो और घूमो घूमो, हम चतुर्भुज विष्णु हैं। बाबा हमारी दादियों से सब कुछ काम कराए। जब यहां माउंट अबू आए, यहां तो कुछ भी नहीं था, यहां खाली राजा महाराजाओं का पैलेस देख रहे हो, ये था हिल स्टेशन। गर्मी के समय में आते थोड़े दिन, बाकी तो ऐसे आदिवासियों लोग रहते थे, यहां कुछ नहीं था। एक भरतपुर राजा की कोठी थी, वहां बगल में श्मशान घाट है, एकदम डेजर्टेड। वहां हमारी सभी दादियां रहते थे। वहां चीता देखो, भालू देखो, अजगर देखो, ऐसा डेजर्टेड, भूत प्रेत, रात भर पहरा भी देते थे, सब काम करते थे। सब दादियों को बाबा ने, ऐसे बहनों को बचपन से ही साइकोलॉजी ऐसा कर दिया जाता है समाज में, माँ बाप सब उनको सबसे एकदम कमजोर दुर्बल ऐसे साइकोलॉजी बन जाती है, लेकिन बाबा ने नारी शक्ति को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि दादियां कभी उनको भान ही नहीं रहा। तो इसलिए चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, सबसे पहले सोचना है कि मैं वर्तमान साकार दुनिया में, मैं साकार रूप में ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ब्राह्मण चोटी हूं, मैं अकाल तख्त नसीन हूं भ्रुकुटी तख्त में विराजित, मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण पवित्र, और इस साकार शरीर द्वारा यहां मैं ईश्वरीय सेवा अर्थ हूं, मैं तपस्वी हूं। तो अभी संगम युग में मैं एक साकारी ब्राह्मण स्वरूप आत्मा हूं। फिर एक मिनट अनुभव करने के बाद फिर सूक्ष्म वतन में मैं आकारी फरिश्ता स्वरूप हूं। मेरा शरीर पांच तत्वों का नहीं, बिल्कुल लाइट का शरीर है। मस्तक के चहों और एक सुंदर पवित्रता का प्रभाव मंडल है, उमंग उत्साह के पंख है। मैं संपूर्ण पावन सबसे न्यारा, मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, पांचों तत्व और पांचों विकारों के आकर्षण से परे, फर्श से ऊपर अर्श निवासी प्रभु संदेश वाहक, मैं बिल्कुल डबल लाइट फरिश्ता हूं, आकारी फरिश्ता। फिर एक मिनट के बाद मूल वतन में परम धाम में निराकारी ज्योति हूं, ना कोई साकारी शरीर ना कोई आकारी शरीर, एकदम बिंदु रूप, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, झिलमिल सितारा, एक प्रकाश का दिव्य पुंज, एक डिवाइन लाइट। फिर एक मिनट में सृष्टि के आदि काल में संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा हूं, डबल सिर ताज, एक सुंदर पवित्रता का ताज, एक रत्न जड़ित स्वर्णिम ताज, माथे पर विजय का तिलक, वैजयंती माला, गले में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए संपूर्ण अलंकारी मूर्त, विश्व का मालिक मास्टर सर्वशक्तिमान। फिर आ जाओ ब्राह्मण स्वरूप साकारी स्वरूप, वही मेरा पूज्य स्वरूप, वही मेरा मध्यकाल में अनगिनत भगवत आत्माएं मेरी मूर्ति रखकर पूजा करेंगे। तो साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी ब्राह्मण, आकारी फरिश्ता, निराकारी ज्योति, निर्विकारी देवात्मा। जैसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पीटी करते हैं, इसी को एक एक मिनट में, एक एक मिनट में, एक एक मिनट में इस स्वरूप को अनुभव करना, चिंतन करना, अनुभव करना, मैं ऐसा हूं रियली अनुभव हो, तो अंत में जो बहुत समय से इसको अभ्यास किया होगा, अंत में बाबा कहेंगे अशरीरी भव, एक सेकंड में बिंदु हो गए, चल पड़े बाबा के साथ, देवान भूल जाए बिल्कुल। बाबा कहते बहुत काल से ये अभ्यास अगर नहीं किए हो तो अंत में फेल हो जाओगे। तो अगले साल 2022 में हम ठान लें, जैसे विचार सागर मंथन करना ही है, कुछ भी हो जाए डेली एक डायरी बनाइए, एक टॉपिक पर मुझे डेली चिंतन करना ही है, कोई ना कोई टॉपिक ले लो, साकार मुरली से ले लो, अव्यक्त मुरली से, कोई टॉपिक पर जो मन में आता है। इसी प्रकार मुझे 8 बार ड्रिल करना ही है, चाहे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, लेकिन लेकिन करना ही है। हर घंटे कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 8 बार करना है। और बाकी समय में आत्माभिमानी होकर रहना, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है, फाउंडेशन ही आत्माभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना। फिर बाद में अशरीरी और फरिश्ता बनना तो बाद की बात है, पहले आत्माभिमानी बनना, बाद में अशरीरी फरिश्ता बनना, बाद में देवता बनना। तो इसलिए सारा दिन कितने समय तक मेरी आत्मिक दृष्टिवृत्ति रहती है, मैं स्वयं को आत्मस समझकर, बाबा रोज पढ़ाते हैं, रोज कह रहे हैं आत्माभिमानी बनो, तो इसका अभ्यास करूंगा जितना हो सके देवान भूलने का। तो योग में नवीनता ही लाए, ये सब का चार्ट लिखना है। रोज चार्ट लिखेंगे तो ही पता चलेगा, चार्ट चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा जीवन में, प्रगति होगी नहीं। चार्ट में क्या लिखना है 16 बातें बाद में बताऊंगा, लास्ट में आपको 16 श्रृंगार बनना है ना, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो 16 बातें क्या क्या चेक करना है बताऊंगा लास्ट में। तो योग में नवीनता लाएंगे रूहानी ड्रिल और सारा दिन देही अभिमानी स्थिति। धारणा का सब्जेक्ट में हमें निर्विकारी बनना है, तो सर्वगुण संपन्न बनना है, सारी गुणों को धारण करना है, लेकिन सत्वप्रधान बनना है। तो कैसे बने, बता रहा था 7 गुण हमारे जो है, ये 7 गुण से 7 विकार को खत्म कर सकते हैं। 7 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो 5 विकार मुख्य है ही रावण। लेकिन आप रामायण अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो रावण में, रावण कब मरता है, उससे पहले उसके सारे जितने 1 लाख पोत्रे और पोत्रे 1.25 लाख सब खत्म हो गए। लास्ट में कुंभकर्ण मरता है, कुंभकर्ण के बाद फिर इंद्रजीत मरता है, इंद्रजीत के बाद रावण मरता है। तो कुंभकर्ण प्रतीक है आलस्य का, ये 6ठा विकार कहते हैं, आलस्य और अलवेलापन। आपके पास सारे विशेषता होते हुए भी, गुण होते हुए भी, अगर आलस्य है सब 0 हो जाएगा, आप कुछ करेंगे ही नहीं जीवन में। तो आलस्य को छोटा विकार नहीं समझना, मोटा विकार है। ब्राह्मण जीवन में आलस्य आया तो अमृतवेला खत्म, मुरली खत्म, सब खत्म, वहीं रहेंगे, प्रगति होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आलस्य पर भी विजय प्राप्त करना है। और 6ठा 7वां विकार है भय। मेघनाद कहते थे, इंद्रजीत जो बड़ा बेटा था रावण का, उसका नाम मेघनाद, मेघ जैसा गर्जन करता था, कोई भी एकदम हृदय एकदम कांप जाए बिल्कुल, तो भय पैदा करने वाला। तो इसलिए भय भी एक बहुत बड़ा बाधक है पुरुषार्थ के लिए, भय भी नहीं होना चाहिए। बाकी तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कॉकरोच देखने से डरते हैं, शिव शक्ति हैं, चूहा देखने से डरते हैं, शेर पर सवार करने वाली, तो भय भी नहीं होना चाहिए जरा भी, क्योंकि अंत महाविनाश देखने के लिए बिल्कुल अंगत समान अचल अड़ोल निर्भय बनना जरूरी है, क्योंकि हाहाकार होगा अंत में, डरपोक तो हार्ट अटैक होके वहीं गिर पड़ेगा। तो इसलिए आलस्य और भय ये 6ठा और 7वां विकार है। ये 7 विकार को हम 7 गुणों से खत्म कर सकते हैं। ज्ञान से कौन सा विकार खत्म होगा, चिंतन कीजिए, सोचा है कभी नहीं? ज्ञान से मोह नष्ट होता है। अर्जुन को मोह ने घेरा था, युद्ध के मैदान में गांडीव को नीचे पटका के गाल में हाथ रख के, हे प्रभु मेरा हाथ पांव कांप रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये मेरे चचेरे चाचा काका मामा गुरु गोसाई इनके साथ कैसे युद्ध करूं, उनको मोह घेर के रखा था। भगवान ने जब ज्ञान दिया, अर्जुन क्या कहता है, प्रभु मैं नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया। तो ज्ञान से मोह नष्ट होता है। अगर ज्ञान हमारे जीवन में पूरा है तो हमारे कोई मोह नहीं रहेगा, कोई अटैचमेंट किसी से नहीं रहेगा, सबको आत्मिक दृष्टि से देखिए। पवित्रता से काम विकार पर विजय प्राप्त करेंगे, सुख से लोभ विकार पर विजय प्राप्त करेंगे, शांति से क्रोध विकार पर विजय प्राप्त करेंगे, शांति अगर जीवन में आएगी तो क्रोध खत्म, अगर सुख जीवन में है तो लोभ खत्म, क्योंकि सुखी रहने के लिए तो लोभ करते हैं लोग, रिश्वत लेंगे इसमें क्योंकि अच्छा मकान बनाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सुखी खाओ, ऐसे सुख मिलता है लोगों को, इसलिए तो लोभ करते हैं। तो जिसके जीवन में अतीन्द्रिय सुख आ गया, सुख हो गया, तो फिर तो लोभ काहे को। और इसी प्रकार प्रेम से अहंकार खत्म हो जाता है, जहां प्रेम प्यार है वहां अहंकार दिखाएंगे क्या? नहीं। और आनंद से आलस्य खत्म हो जाता है, जीवन में आनंद उल्लास उमंग सा है तो आलस्य कहां से आएगा, और शक्ति स्वरूप बन जाएंगे तो भय खत्म हो जाएगा। तो सातों गुणों से सातों विकारों पर विजय प्राप्त करना है, तो इसलिए क्या पुरुषार्थ करना है? 7 दिन है हफ्ता को, पहले बाबा दादियां हम कहते थे, दादियां कि हमको बाबा एक एक दिन का प्रोग्राम देते थे, आज बच्ची आज शांत स्वरूप आत्माओं में अनुभव करना, सारा दिन उसका स्वरूप बनना, आज प्रेम स्वरूप अनुभव करना। महीनों तक हफ्ता तक बाबा प्रोग्राम देते थे ऐसा बनना है। तो आप 7 दिन में 7 गुणों का अभ्यास करना है। सोमवार को बाबा सोमरस ज्ञान रस पिलाने वाला, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मंगलवार चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, तो मैं पवित्र स्वरूप, मंगलम विष्णु भगवान कहते हैं, तो विष्णु समान संपूर्ण निर्विकारी, तो मंगलवार को मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। बुधवार को सुख स्वरूप आत्मा हूं। गुरुवार को जीवन में सतगुरु मिली, शांति आई, शांत स्वरूप आत्मा। शुक्रवार को प्रेम स्वरूप आत्मा। शनिवार को जीवन में सब ग्रहचारी मिट गई, आनंद ही आनंद आ गया जीवन में, आनंद स्वरूप। और संडे को सूर्य समान शक्ति स्वरूप, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो 7 दिन को 7 गुण का अभ्यास करना है, ये नया पुरुषार्थ करना है। इस साल पूरा मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, नहीं तो फिर वही कदम पिछले साल भी जैसे वही साल वैसे, मुरली सुन लिया सुन लिया, हाँ योग थोड़ा कर लिया कर लिया, सेवा कर लिया कर लिया, फिर तो वही क्लास में बैठे हैं। ये साल में ये चेंज करना है। तो 7 गुण को इसका गहराई में चिंतन करके सारा दिन इसका अभ्यास करना है। मुझे सतो प्रधान बनना है, मुझे निर्विकारी बनना है। 7 गुणों को खत्म करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे, तो ही सतयुग का शुरू में आएंगे। और जितने दैवी गुण है, बाबा कहते हैं सारे गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अगर एक गुण भी कम हो जाए तो सतयुग के प्रारंभ में नहीं आ पाओगे। सर्वगुण संपन्न तो सारे गुण जीवन में होना चाहिए। पढ़ाई कितनी गहराई है, यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है, बहुत सहज नहीं है, गुह्य है, गोपनीय है, महीन पुरुषार्थ चाहिए। तो पहले ये 7 करें, बाद में 36 दैवी गुण है, कम से कम 56 गुण दादी जानकी जी मनन के थे, एक बार डायरी में 56 गुण आया था, 56 दैवी गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। वो सारे गुणों पर फिर विस्तार में चिंतन करके उसको कैसे स्वरूप बने उसको चिंतन करना है, वो तो बाद में है, लेकिन ये साल हम ये 7 गुण को जीवन में अपना लें तो ये बहुत है। और सेवा, सेवा में क्या नवीनता लाएं? तो ज्ञान, फिर सिर भेज करता हूं, ज्ञान में क्या करना? रूहानी ज्ञान में क्या करना? विचार सागर मंथन करना और स्वरूप बनना। योग में क्या करना? योग में 5 स्वरूप का ड्रिल, 4 स्वरूप कंबाइंड करके कर दिया, 8 बार मिनिमम करना है, और सारा दिन देह अभिमान मिट जाए, बिल्कुल आत्माभिमानी होकर रहने का प्रसाद करेंगे, आत्मिक दृष्टिवृत्ति बनाए रखेंगे। धारणा का सब्जेक्ट में क्या बताया? 7 गुणों को 7 दिन में स्वरूप बनना उसका। एक दिन में ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, पवित्र स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो। तो अगर ऐसा हूं तो मेरे चाल चलन बोल व्यवहार आचरण कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकली चिंतन करके ऐसा बनो, चिंतन कीजिए उसके बारे में, विचार सागर मंथन कीजिए। सेवा में क्या नवीनता लाएंगे? बाबा कहते हैं इस वर्ष अंत में बच्चे देखना सब बंद हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आजकल तो ऑनलाइन सब चल रहा है, ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती है क्या?
प्रैक्टिकली आके जैसे सीखोगे उसमें जो शक्ति है, जो बल है, जो धारणा है, ऑनलाइन में पढ़ाई होती है। समुन्द्र को जाए बिना कोई तैरना सीखेगा क्या सीखेगा? हॉस्पिटल जाए बिना डॉक्टर बन गया ऑनलाइन पढ़ के, क्या होगा फिर? तो ऐसे ही ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिकल। अभी देखना आगे चल के सब कुछ बंद बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा कहते हैं अंत में मनसा सेवा ही काम करेगा, तो इसका अभ्यास करो। जो अभ्यासी नहीं होंगे अंत में क्या करेंगे? और मनसा सेवा ही सबसे फास्ट सेवा है, एकदम लास्ट ऑफ फास्ट जा सकते हो। सबसे श्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा, बाबा कहते हैं मनसा सेवा का अभ्यासी बनो। बाबा कहते हैं तो मनसा सेवा कब करेंगे? मनसा सेवा के लिए अमृत वेला और नुमासाम, ये दोनों समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत वेले 4 से 4:45 ये समय सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए है। उससे पहले आप स्व सेवा करिए, आत्मानुभूति कीजिए, आत्मस्वरूप में स्थित हुए एकाग्र हो जाइए, बाबा से ड्रिल कीजिए, बाबा से वरदान लीजिए। लेकिन 4 से 4:45 बाप समान स्थिति में बैठ के बिल्कुल सारे विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं, बैठ जाइए परमधाम में बाबा के साथ, कंबाइंड स्वरूप हूं, मैं सिर्फ शक्ति हूं, ज्ञान सूर्य हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, वहां से एकदम सकाश फैला रहा हूं सारे विश्व पर। पांचों तत्वों को, पांच सभी प्राणी जगत को, सबको पावन बनाना है। किसी को भाषण करके कर सकते हैं क्या? नहीं, वहां से लाइट फैलाना है, लाइट माइट फैलाना है। और फिर थोड़े समय आ जाइए सूक्ष्म वतन में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मा बाबा के साथ, फरिश्तों का राजा बाबा के साथ कंबाइंड होके। दादी जानकी कहती थी कि मैं अमृत वेले जैसे हनुमान उड़ता है, ऐसे अमृत वेले एक कंधे में बाबा को बिठाती हूं, एक कंधे में मम्मा को बिठाती हूं, यहां शिव बाबा को बिठाती हूं, और त्रिमूर्ति लाइटधारी होकर सारे विश्व अंतरिक्ष में परिक्रमा लगाती हूं। एकदम शिव बाबा से लेजर बीम की तरह लाइट निकल रही है, ब्रह्मा बाबा मम्मा से निकल रही है, मैं भी वरदानी हाथ से फरिश्ता बनकर मैं भी हाथ से लाइट निकल रही हूं और सारे विश्व पर सकाश दे रहा हूं, अंतरिक्ष में पूरा परिक्रमा लगा रही हूं। करिए ऐसे, हमारी दादियां ने किया है, सभी ने। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति लाइट धारी बनो सवेरे सवेरे, मस्तक से यहां से ज्योति निकल रही है, दोनों आंखों से लेजर बीम की तरह निकल रही है, हाथों से वरदानी हाथों से निकल रही है, मैं पवित्रता का अवतार हूं, सारे विश्व को पावन बना रहे। विश्व सेवा कीजिए। हे आत्माएं उठो जागो, अंतिम समय है, देखो ये हमारे अनादि पिता शिव बाबा आए हैं घर ले चलने के लिए। देखो आदि पिता को पहचानो, यही तो ब्रह्मा बाबा है, दोनों पिताएं आह्वान कर रहे हैं, चलो घर चलना है, फिर आना है सत्ययुग में, तो सकाश दो, संदेश दो। इसी प्रकार नुमासाम भी 6 से 8 बजे के बीच में कभी भी आधा घंटा पौना घंटा दोनों समय करना है, मनसा सेवा करना है, ये नवीनता लानी है। और चार्ट लिखना है डेली, चारों सब्जेक्ट में चार बातें आपको बताया, और चार्ट लिखना है, क्योंकि चार्ट जो नहीं लिखते हैं, बाबा देखना हर 15 दिन में, 1 महीने में जरूर आएगा, बच्चे चार्ट लिखो चार्ट लिखो चार्ट लिखो, अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं वो चार्ट लिखते हैं। तो चार्ट नहीं लिखेंगे तो चेंज नहीं होंगे, वही कदम वही ठहरती कला, परिवर्तन नहीं होगा। चार्ट में क्या क्या लिखें, 16 बातें बताता हूं, 16 कला संपूर्ण बनना है ना, 16 बातें लिखना है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टाइम निर्धारित कीजिए, गुड मॉर्निंग कब उठना है मुझे, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, मुझे गुड मॉर्निंग कब करना है। हमारे ऐसे जनरल तो 3:30 बजे का नियम है, सारी वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, चाहे अमेरिका जाओ चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ कहीं जाओ, 3:30 बजा माना सभी उठेंगे। अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही वेला है मेरे लाडले जागो। लेकिन उठ के मेरे भाई और बहनों, मैं बाबा को एक सीक्रेट, बाबा का एक सीक्रेट राज सुना देता हूं आपको। सत्युग में जो प्रजा बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, कोई नहीं चाहते? अच्छा अच्छा, जो राजा रानी बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, वाह वेरी गुड। लेकिन अगर राजा रानी महाराजा महारानी बनना है तो बाबा ने साकार बाबा ने कहा है एक धारणा, मैं आपको पूछता हूं फिर बताऊंगा। वो जो सवेरे सवेरे जो भाई बहने सवेरे उठकर स्नान करके बाबा को याद करते हैं अमृत वेले से पहले नहा धो के करते हैं, हाथ उठाओ। देखा, 10% भी नहीं। देखो बाबा ने क्या कहा जानते हो, बाबा ने कहा जो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं वो बच्चे जाके राजा बनेंगे, ये साकार महावाक्य है। देखो आप मंदिर भी जाते हैं तो बिना नहाए धोए जाते हैं क्या? जाते हैं। एक जड़ मूर्ति का दर्शन करने के लिए भी नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, और यहां स्वयं भगवान से मिलन मनाना है, वही खटिया से उठ के वही नाइट ड्रेस पहन के बाल भी ऐसे लार भी निकला है, गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा दृष्टि देंगे, सोचो तो सही। तो उठते ही हमारी मनोहर दादी कहती थी एक छोटा स्नान, फट से एक सवार ले लो, बाद में अच्छी तरह से स्नान करो, पेट फेट साफ बाद में होगा, तो ब्रश फ्रश करके स्नान कर देना, कपड़े चेंज करना, एकदम फ्रेश कपड़ा पहन के बाबा को याद करना। तो अमृत वेला का टाइम फिक्स करो, मुझे कितने बजे उठना है, डेली एक दिन भी मिस ना हो। आप जानते हैं मैं जैसे भाई जी परिचय दे रहे थे, मैं जगदीश भाई जी को पूछा, दादियों को पूछा, सभी ने कहा कि बाबा 2 बजे सार्प उठ जाते थे। तो मैं दादी को पूछा था, बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, इतना लेट आया हूं, क्या करूं कैसे करूं? दादी ने कहा बाबा जी सब पुरुषार्थ करो। जगदीश भाई को पूछा था, जगदीश भाई ने कहा मैं बाबा को देख के मैं भी 2 बजे से पहले उठा, तो मैं भी बोला कि मैं भी उठूंगा, और मैं एक साल पूरा एक दिन मिस नहीं किया, और 7 पांडव भवन में जाके बाबा कमरे में पहुंच जाता था 2 बजे, गुड मॉर्निंग बाबा मैं आ गया कहता था। और जब एक साल पूरा हुआ बाबा आए हुए थे, और मुझे मैं बैठा हूं बीच में ऐसी सभा में, हमारी शशि बहन जी अनाउंस करती है कि डॉक्टर श्रीमंत भाई कहां बैठे हो, बाबा के पास आओ। मैं बोला वाह लॉटरी मिल गया, मैं जाके एकदम सामने जाके बाबा के सामने छोटे बच्चे जैसा निर्लय होकर बैठ गया। तो बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दिए, और बाबा ने कहा बहुत अच्छा बच्चे, ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहना, ऐसे ही करते रहना। फिर उन दिनों में बाबा टोली किसको नहीं देते थे, पहले तो हमने टोली खाया है लेकिन टोली नहीं देते, दादी प्रकाश मणि देती थी, लेकिन बाबा दादी के प्लेट से ही टोली लेके आए। मैं बोला वाह इतने साल के बाद बाबा टोली दे रहे हैं, मैं ऐसा किया, तो बाबा ने कहा नहीं मुंह खोलो ऐसे खिला दी। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाता हूं। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि सभी 2 बजे उठ जाओ, हर एक की दिनचर्या अलग है, हर एक की तबीयत अलग है। जो नियम हमारा 3:30 बजे पक्का करो उसको, 4 से 4:45 पावरफुल योग होना चाहिए, बहुत जल्दी उठ के खाली झुटका खा के क्या फायदा। तो एक टाइम टेबल फिक्स करो, इतने बजे मुझे उठना है डेली विदाउट फेल, एक दिन भी मिस नहीं। शिव बाबा को सदा शब्द पसंद है, सदा शिव है ना, सदा, कभी कभी नहीं, सदा जो करता है बाबा उसको वरदान देते हैं। नेक्स्ट, अमृत वेला मेरा कैसा हुआ, एकदम पावरफुल स्थिति ए लिखो, ए ग्रेड, मीडियम रहा बी ग्रेड, ऐसे थोड़ा झुटका खाया थोड़ा ऐसे ही कुछ अनुभव नहीं हुआ सी ग्रेड, मिस किया क्रॉस। चार्ट लिखो डेली, मुझे ए ग्रेड करना है, एकदम पावरफुल बाबा से लाइट माइट लेके कंबाइंड स्वरूप अनुभव करना है। उसके बाद अमृत वेले के बाद एक्सरसाइज करना है, रोज एक्सरसाइज करना है। देखिए मेरे भाई और बहनों, एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूं, देखता हूं 50-60 साल के बाद कैसे हालत हो जाती है, ना पुरुषार्थ कर पाओगे, ना योग लगेगा, ना बीमारी में हाय हाय। आज दुनिया में सबको एक्सरसाइज करना जरूरी है, और रोज हम ग्लोबल हॉस्पिटल से हम भाई बहन मिल के करते हैं, और ऑनलाइन भी जाता है 6 से 6:30 रेगुलर, आपको साथ में कर सकते हो आप एक्सरसाइज, यहां भी हमारे सुरेश भाई आप सभी को करा रहे हैं, करो एक्सरसाइज, आधा घंटा करना है, बाबा के गीत के साथ करना है, वही योग है, देखना फिट रहोगे। बॉडी ठीक नहीं रहा ना, अपना योग लगेगा, ना सेवा कर पाएंगे, ना पुरुषार्थ, कुछ नहीं होगा, देखना हाय हाय करके जाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करना है, पहले आत्मा का एक्सरसाइज योग, फिर फिजिकल एक्सरसाइज, फिर उसके बाद मुरली। मुरली सुनते समय कैसा स्थिति रही, एकदम पावरफुल चत्रक जैसा, बाबा का एक एक शब्द जैसे कि समा रहे हैं, एकदम खुशी खुशी से भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं, मैं भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट हूं, ए ग्रेड। ऐसे ही आया थोड़ा सुना ठीक है, नेमिनाथ जैसा बी ग्रेड, झुटका आया बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, लेट आए पहले से चले गए, वो सब सी ग्रेड हो गया, एब्सेंट तो फिर क्रॉस लग गया। फिर इसी प्रकार आत्मा का भोजन मुरली हो गई, उसके बाद ब्रह्मा भोजन।
जब हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं हमारी स्थिति कैसी होती है? शारीरिक भोजन, ब्रह्मा भोजन, दुख भंजन भोजन बाबा कहते हैं। बड़े प्यार से रुचि से बाबा को याद करके गिट्टी गिट्टी खाओ। टाइम हो गया है, अभी दो मिनट में पूरा करता हूं। तो ब्रह्मा भोजन खाते समय हमारी स्थिति कैसी रही? ए बी सी लिखिए। इसके बाद हमारी दृष्टि वृत्ति स्थिति, दृष्टि कैसे रही सारे दिन? दैहिक दृष्टि रही, आत्मिक दृष्टि रही, कैसे रही? दृष्टि के ऊपर रखिए, ए बी सी। और दृष्टि वृत्ति, मेरी वृत्ति कैसी रही सबके प्रति? भावना कैसी रही? आत्मिक वृत्ति रही सबके प्रति? ये भी बाबा के बच्चे हैं, जो भी हो, कोई भी मिले, सब बाबा तो बंदर को भी बच्चा बच्चा कहते थे, गाय को भी बच्चा बच्चा कहते थे, सबके प्रति मेरी सुवृत्ति कल्याणकारी वृत्ति रही। और स्थिति कैसे रही? सारा दिन खुशी में, उमंग उत्साह, आनंद प्रफुल्लित, एकदम उमंग उत्साह में, आपका झलक फलक देखे कोई भी कहे अरे इसको क्या मिला, लॉटरी मिल गई क्या, ऐसी स्थिति रही तो ए ग्रेड, ठीक है चल रहे हैं। कभी सुस्ती आई, आलस आया, मूड ऑफ हुआ, ये हुआ, सी ग्रेड हो गया। तो दृष्टि वृत्ति स्थिति, फिर इस प्रकार संकल्प वाणी कर्म, संकल्प वाणी कर्म, मेरा संकल्प सारा दिन कैसा रहा? सबके प्रति शुभ संकल्प रहा, समर्थ संकल्प रहा, सकारात्मक संकल्प रहा, व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, नकारात्मक तो बहुत दूर की बात है। साधारण संकल्प भी बाबा कहते अपवित्रता है, साधारण संकल्प नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ समर्थ संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार मेरा बोल कैसा रहा? सबके प्रति सुखदायी बोल, हम रोज सुनते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, बाबा रोज कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे, तो हम मीठा बोलते हैं, जोर से बोलना, किसी को दुख देने वाले बोल बोलना नहीं, तो बोल बाबा जैसे कहते हैं ऐसा हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, आवश्यक बोल बोलो, तौल के बोलो, सुखदायी बोल बोलो, महावाक्य के समान बोल बोलो, सत्वचन महाराज कहें ऐसा बोल बोलो, वरदानी बोल बोलो, उमंग साह दिलाने वाले बोल बोलो, ऐसा बोल निकला। कर्म भी कैसा रहा? ए बी सी सब लिखना, दृष्टि संकल्प वाणी कर्म। फिर इस प्रकार नुमा साम योग स्थिति कैसी रही? और नुमा साम फिर बाबा की मुरली रिवाइज की, बाबा ने कल भी बताया था, तीन चार बार कम से कम मुरली पढ़ना चाहिए, अगर पांच आठ बार पढ़ोगे तो आप ब्राह्मणी से भी आगे जा सकते हो, बाबा ने कहा, टीचर से भी आगे जा सकते हो, तो कम से कम तीन चार बार मुरली, हमारी दादियों को देखा है सभी पढ़ते, तो शाम का मुरली रिविजन जरूर करना है। और शाम का नुमा साम योग कैसा रहा? और रात्रि सोने से पहले योग किया? बाबा कहते पहले योग करो फिर सो, ऐसे नहीं सो जाना। और रात को चार्ट लिखा और गुड नाइट का टाइम, बाबा कहते 10 करो बस। आप मधुबन की दिनचर्या देखना, मैक्सिमम 10:30, अभ्यक्त ने छुट्टी दी है 11, मैक्सिमम 11, उससे पहले बाद नहीं, तो 10-10:30 बजे तक सो जाता हूं, तो 16 बातें हुई आप देख लेना। सबसे पहले गुड मॉर्निंग का टाइम, फिर अमृत वेला, फिर मुरली, फिर एक्सरसाइज, मुरली, ब्रह्मा भोजन, फिर दृष्टि वृत्ति स्थिति, संकल्प वाणी कर्म, नुमासाम योग, नुमासाम मुरली, फिर रात सोने से पहले योग, फिर चाट, फिर गुड नाइट। तो ये चाट खुद बनाइए और खुद चेक कीजिए, जब तक चाट नहीं लिखेंगे कुछ परिवर्तन नहीं होगा जीवन में, चेंज होगा नहीं। और तो बीच बीच में भी चेक करो, रात को भी चेक करो। तो ये नया साल में मैं जो सोचा मैं खुद भी कर रहा हूं, करूंगा भी, और आप सभी के लिए भी शेयर किया, ठीक है? ओके नहीं, ओ उस समय संकल्प सामान्य संकल्प उसको नहीं कहते, वो तो व्यवहार जीवन में बाबा को याद करके आप करोगे तो उसको कर्मयोग कहा जाता है। अगर जो भी कर्म करते हो बाबा को साथी बनाकर, बाबा के साथ कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा ही। आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा, ये सामान लाना है, ये सामान उसको देना है, तो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा को याद करके साथी बन के करेंगे तो कर्मयोग कहा जाएगा। मन में जैसे वृत्त बना सर्किल, तो कोई थॉट्स रिपीटेडली चलता है तो उससे वाइब्रेशन वृत्ति बनती है, और उससे अनुसार हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन जाता है। तो किसी के व्यक्ति के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण होता है उसको वृत्ति कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल पहले आप जानते थे, वो कोई चोरी किया था, अब कभी भी देखोगे तो उसको है ये तो चोर है, उसके प्रति दृष्टिकोण हो गया, वो वृत्ति हो गई।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए वृत्ति सबके प्रति। अरे 10 साल पहले था ना, अभी तो बदल गया होगा, हम भी बदल रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं, चेंज करना है। ठीक है, ओम शांति। चलो सभी 2 मिनट बाबा को याद करें।